اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم دوستو، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی۔ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے پروڈیوسر ہیں انجم ہیریٹ گل اور انجینئر ہیں ٹامس وینڈر۔ یہ پروگرام پاکستان اور بھارت میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com اور فیس بک پر بھی سنا جا سکتا ہے۔ ہمارے پیج کا ایڈریس ہے facebook.com/voaurdu۔ دوستو، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ظہور کے ساتھ پوری دنیا میں معلومات کا ایک طوفان آ گیا، اور گزشتہ 20-25 سال میں موبائل فون ہر خاص و عام بلکہ بچے بچے کے ہاتھ میں آ جانے سے ہر شخص باخبر رہنے لگا۔ اس انقلاب کے بہت سے فائدے بھی ہوئے ہیں، لیکن حضرت انسان کو کچھ نقصانات بھی اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ فیک نیوز یا جعلی خبریں گھڑی جا رہی ہیں اور پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس کام کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا آسان ہے، کیونکہ اس پر ویسا چیک اینڈ بیلنس نہیں جیسا مین اسٹریم میڈیا میں ہوتا ہے یا ہوتا تھا۔ تھا اس لیے کہ اب بعض اوقات پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی فیک نیوز نظر آتی ہیں اور دیکھنے اور سننے والے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فیک نیوز کیا ہے اور یہ پھیلتی کس طرح ہے؟ کون لوگ ہیں جو فیک نیوز پھیلانا چاہتے ہیں؟ مین اسٹریم میڈیا اس کا شکار کیسے ہو جاتا ہے؟ آج اس بارے میں ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے احمد نورانی، جو روزنامہ دی نیوز اسلام آباد کے سینئر رپورٹر ہیں۔ ان کے علاوہ ہوں گے عامر ضیاء، جو ہم ٹی وی سے منسلک ہیں اور اخبار کے ایڈیٹر اور ڈائریکٹر نیوز بھی چینلز کے رہ چکے ہیں۔ محمد عثمان نیو ٹی وی کے ڈائریکٹر نیوز ہیں۔ مظہر عباس سینئر تجزیہ کار اور پی ایف یو جے کے سابق صدر ہیں۔ وجاہت مسعود جو سینئر کالم نویس اور نیوز ویب سائٹ ہم سب کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ اور ان کے علاوہ ہوں گے حامر ہاشم خاکوانی، جو روزنامہ 92 کے میگزین ایڈیٹر اور کالم نگار ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے احمد نورانی سے، جنہوں نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نورانی صاحب، آپ رپورٹر ہیں اور ایسے رپورٹر ہیں جو کسی حکومت کو پسند نہیں آتے۔ آپ کی اکثر خبریں ہلچل مچاتی ہیں، اور میں نے اعتزاز احسن اور دوسرے سیاستدانوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ آپ جھوٹی خبریں چھاپتے ہیں۔ تو کیا واقعی کبھی کوئی رپورٹر جان بوجھ کر فیک نیوز چھاپتا ہے؟
دیکھیں، فیک نیوز کے بارے میں جو ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ بنتا چلا جا رہا ہے، کسی بھی چیز کے حوالے سے بجائے ایک صحیح چیز آپ کے نالج یا سمجھ میں آئے، اتفاق کہتا ہے کہ میں جو لوگوں سے ڈسکشن کرتا ہوں، بلکہ چند صحافیوں سے ڈسکشن کرتا ہوں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو فیک نیوز کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ میں، بلکہ آپ کے پینل میں تو بہت سے سینئر جرنلسٹ بھی شامل ہیں، وہ شاید توصیح کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں گا۔ تو فیک نیوز سے مراد میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ خبر جو گھڑی جائے، جو جھوٹی بات ہو، جس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو، سرے سے ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے اور آپ ایک چیز کو گھڑ کے پیش کر دیں، ایک چیز کو گھڑ کے سامنے لے آئیں، وہ فیک نیوز ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی چیز کرتی ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ سوشل میڈیا کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور صاف ظاہر ہے جس طرح پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، تو اپنے گروپس بنائے جاتے ہیں، پروپیگنڈا گروپس بنائے جاتے ہیں، ایک نیریٹو سیٹ کیا جاتا ہے اپنے رول کو، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو وہاں سے جنریٹ کی جاتی ہے ایک فیک نیوز جس کو پھیلایا جاتا ہے، صرف سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ فیک نیوز کو پھیلایا جاتا ہے صحافیوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی۔ جہاں تک الزامات کی بات ہے، الزامات صحافیوں پہ لگتے رہتے ہیں، بالکل صحافی استعمال ہوتے ہیں فیک نیوز کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے، خاص نیریٹوز کو وہ کرنے کے لیے، پروپیگیٹ کرنے کے لیے۔ یہ فیکٹ ہے، بہرحال ایسا ہوتا ہے، اور ہم اپنے الیکٹرانک میڈیا میں پچھلے 3-4 سال سے اس چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح چند مخصوص مقاصد کو پورا کرنے کے لیے مختلف چینلز کے اوپر، خصوصی طور پہ الیکٹرانک میڈیا میں، مسلسل جھوٹی اور بے بنیاد خبریں چلائی گئیں جن کا کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، اور جو وقت کے ساتھ جھوٹی بھی ثابت ہوئی، لیکن کبھی کسی نے اس کو اس کے اوپر کلیریفائی بھی نہیں کیا یا آ کے اپنا اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش بھی نہیں کیا. تو یقیناً مین اسٹریم میڈیا بھی استعمال ہوتا ہے فیک نیوز کو بڑھانے کے لیے.
ٹھیک ہے, ہمیں عامر ضیاء صاحب نے بھی جوائن کر لیا, لیکن میں ایک سوال آپ سے اور ابھی کرنا چاہوں گا کہ ذرائع کے حوالے سے جو خبریں چھاپی جاتی ہیں اخبارات میں, اب تو بلکہ ٹیلی ویژن پہ بھی بعض خبریں ذرائع کے حوالے سے دی جاتی ہیں, حالانکہ یہ دستور ویسے ہونا نہیں چاہیے, تو ان پہ بھی بہت سے لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں. ظاہر ہے اب جب کہتے ہیں کہ ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ فلاں واقعہ پیش آیا ہے, تو اس میں یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جان بوجھ کے کوئی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہو. تو آپ جب ذرائع سے خبریں دیتے ہیں تو پھر یعنی آپ کو بھی یہ احساس تو ہوتا ہوگا نا کہ خبر کی کریڈیبلٹی اور آپ کی اپنی کریڈیبلٹی داؤ پہ لگی ہوئی ہے.
جی, یہ زیادہ پرٹیننٹ کوسچن ہے, شاید اس کے جواب دینے سے میں اپنی بات کو زیادہ بہتر انداز میں ایکسپلین کر سکوں. دیکھیں, میں آپ نے جو شروع میں کہا کہ شاید ذرائع کے حوالے سے خبر نہیں دی جانی چاہیے, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. یہ سارا میڈیا کا جو معاملہ ہوتا ہے یا کسی صحافی کا معاملہ ہوتا ہے خبر دینے کے حوالے سے, یہ ہوتا ہی کریڈیبلٹی کے اوپر ہے. میں ایک خبر دے رہا ہوں وہ صحیح ثابت ہوتی ہے, دوسری دے رہا ہوں وہ صحیح ثابت ہوتی ہے, تو میری ایک کریڈیبلٹی بنے گی. اگر میں نے 10, 15, 20, 50, 100 خبریں صحیح دی ہوئی ہیں تو میری یہ کریڈیبلٹی ہوگی کہ یہ شخص جو بھی خبر دیتا ہے ذرائع کے حوالے سے, گورنمنٹ کے حوالے سے, کسی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے یا کسی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, وہ صحیح ثابت ہوتی ہے. اس میں اگر ایک آدھی خبر غلط ہو جاتی ہے تو اس سے میری کریڈیبلٹی ہرٹ ہوتی ہے, چاہے میں 1000 خبریں ٹھیک دے چکا ہوں. لیکن اگر میں مسلسل غلط خبریں دے رہا ہوں گا, مسلسل ون سائڈڈ اسٹوریز دے رہا ہوں گا, تو میری بات پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ کہنا کہ ذرائع سے خبر ہی نہیں دی جا سکتی یا نہیں دی جانی چاہیے, نہیں, یہ بات بالکل غلط ہے. میرے خیال میں صحافت چلتی اس بات کے اوپر ہے, جو حکومت کے اندر لوگ ہوتے ہیں, جو نظام میں مملکت چلا رہے ہوتے ہیں, ان کے خبر آپ کو وہاں سے نکالنی ہوتی ہے, ان لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ سامنے نہیں آ رہے.
یہ میں نے پرنٹ کے لیے بات نہیں کی, یہ میں ٹیلی ویژن کے لیے بات کرتا. ٹی وی میں ظاہر ہے کہ لوگ اسکرین پر آتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں, اس لیے میں کرتا. عامر ضیاء صاحب سے ہم بات کریں گے. سر, آپ اخبار کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں, چینل کے ڈائریکٹر نیوز بھی رہے ہیں, آپ کیسے یہ فیصلہ کرتے تھے کہ آپ کے پاس جو خبر پہنچی ہے وہ فیک نیوز نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سی خبریں ظاہر ذرائع سے بھی آتی ہیں اور مختلف چینل سے, مختلف رابطوں سے آتی ہیں, جن کے بارے میں ظاہر ہے یہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے.
دیکھیے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ایک زمانے میں جو ایڈیٹر کی پوزیشن ہوا کرتی تھی ہمارے اخبارات میں یا ڈائریکٹ نیوز کی, وہ بڑی مستحکم ہوا کرتی تھی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ چند سال سے کیا کافی عرصے سے پاکستان میں, چاہے وہ اخبارات ہوں چاہے وہ ٹی وی چینلز ہوں, وہاں پر جو ہے مالکان جو ہے وہ خود جو ہے پالیسیز بھی چلا رہے ہوتے ہیں, خبروں کو ڈکٹیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ اخبار میں یہ بھی ہوتا ہے کہ خبر کون سے صفحے پہ جائے گی اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا, اس میں کیا اینگل ہوگا, تو عموماً مالکان جو ہے اس کا عمل دخل ہوتا ہے. یہی حال چینلز کا ہے. تمہارے یہاں ایک دو اداروں کو چھوڑ کر یا ایک دو انسٹیٹیوشنز کو چھوڑ کر, باقی تو ہمارے یہاں جو صحافی جو مینجمنٹ کی سائٹ پر آتے ہیں تو ان کا جو بہت ہی ایک وہ والا کردار ہو گیا ہے, سیریمونیل قسم کا کردار ہو گیا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے جو ہماری ایک منفی ٹرینڈ ہے. اچھا, دوسری بات جو بہت اہم ہے کہ بڑا احمد رانی نے بہت اچھی تعریف کی کہ فیک نیوز ہوتی کیا ہے, جو حقائق کے منافی خبر ہو. اچھا, ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ حقائق سے زیادہ ہمارے یہاں خبر کے اندر نقطہ نظر ہوتا ہے اور اوپینین کے جو ہے ہمارے یہاں وہ کہا جاتا ہے کہ بطور خبر بنا کر پیش کیا جاتا ہے. ذرائع سے ہم یقیناً اگر ہمیں وہاں سے آزاد و شمار حقائق مل رہے ہوں کہ فرض کریں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہائی جیکنگ ہو گئی, اس کے متعلق ہمیں جو لوگ آتھرائز نہیں ہوتے انہوں نے کوئی ہمیں چیز بتائی, ہم نے وہ چلا دی, لیکن یہاں سورسز کر کے باقاعدہ ایک وہ دیا جا رہا ہوتا ہے, خبروں کو اینگل دیا جا رہا ہوتا ہے, تو ہمیں اس چیز کے اندر ایک ہمیں تمیز کرنی چاہیے کہ فیکچوئل اسٹوری کیا ہے اور یہاں پر جو ہے کوئی سم ون از ٹرائنگ ٹو پیڈل ہز اون نیریٹو یا کوئی ایک اوپینین کو پیڈل کر رہا ہے. تو ہماری یہاں اس وقت رپورٹنگ دونوں چیزیں غلط ملط ہو گئی ہیں کہ اس میں نقطۂ نظر جو ہے وہ خبر کے نام پہ چھپرا ہوتا ہے اور بہت ہی ہارڈ قسم کا. تو یہ ایک چیز جو میرے خیال میں بہت بڑا چیلنجنگ ہے. سنسیشنزم بہت زیادہ ہمارے یہاں حاوی ہو گیا ہے کیونکہ اب خصوصاً ٹی وی میں اگر آپ دیکھیں زیدی صاحب, اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہاں پر اسپیڈ کی زیادہ اہمیت ہے اور فیکچوئل ہونے کی اہمیت کم ہو گئی ہے. تو اس میں جب آپ بہت زیادہ انحصار, آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خبر ہر حالت میں سب سے پہلے دینی ہے, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ود دا اسٹوری اینڈ فرسٹ ود دا کلیریفیکیشن. لیکن فرسٹ ود دا کلیریفیکیشن ہم اولڈ اسکول میں بات کرتے ہیں, تو لوگ کلیریفیکیشن دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے. تو ظاہر ہے یہ سارے چیلنجز ہیں ہمارے یہاں,
जी
ठीक है, तो मैं नूरानी साहब से भी ये पूछना चाहूँगा कि ये अक्सर बात की जाती है, शायद आमिर जा साहब भी इसकी इस बात को तस्दीक करेंगे कि सोशल मीडिया ने मेन स्ट्रीम मीडिया को लीड करना शुरू कर दिया है, तो क्या रिपोर्टर्स को भी सोशल मीडिया से लीड मिलती है? लीड यानी कि कोई खबर का यानी इशारा मिल जाता है, और ये भी होता होगा कभी कभी रिपोर्टर गुमराह हो जाते हों?
बिल्कुल मुबशर, ये बात सही है, दोनों पॉइंट्स जो आपने कहे दोनों साइड्स मौजूद होती हैं। मैं एक चीज बस फाइनल कर दूं, जो आपने मेरे से और अमित शाह से सवाल किया फेक न्यूज की तारीफ के हवाले से, उसमें एक चीज बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि घड़ी हुई बात फेक न्यूज होती है। बाद उकात मुझे फर्ज करें खबर मिलती है कि इस कबीना में दो वजीर मजीद आ रहे हैं, मुझे खबर देने वाला आप समझ लें कि द मोस्ट पावरफुल पर्सन है जो फर्ज कर लेंगे जिसने ये फैसला करना है, और मुझे बाकी डेवलपमेंट से पता लग रहा है कि वो दो लोग वजीर बन रहे हैं, मैं खबर दे देता हूं जराये के हवाले से, बाद में फैसला तब्दील हो जाता है, खबर गलत साबित हो जाती है। बहुत सारी खबरें इस तरह की होती हैं जो जब रिपोर्टर दे रहा होता है, हकीकतन बहुत सारे मामलात में हमने देखा कि खबर बिल्कुल ठीक थी लेकिन बाद में वो डेवलपमेंट ही चेंज हो गई, तो लेकिन वो गलत खबर होती है, वो गलत खबर हो जाती है, तो उसको भी फिर आज के दौर में फेक न्यूज के जुमरे में गिनना शुरू कर दिया जाता है। हालांकि मामला वही क्रेडिबिलिटी का होता है कि कोई शख्स किस तरह की या कोई इदारा किस तरह की खबरें देता रहा है। गलती बहरहाल होती है, पूरी दुनिया में होती है, आपको इंफॉर्मेशन लेने में और लोगों तक पहुंचाने में गलती का इस्तेमाल होता है, वो कितना ज्यादा है या वो बंदा जो बुनियादी असूल है उनका कितना ख्याल रख रहा है, कितनी बार गलती कर रहा है, ये चीज देखी जानी होती है। सोशल मीडिया से लीड लेने के हवाले से बिल्कुल मुबशिर साहब बहुत ज्यादा लीड मिलती है, हर हर ख्याल के हर तरह सोचने वाले लोग, बहुत सारे लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपा के वहां बैठे होते हैं, वहां पे वो आपको डायरेक्ट रब्ता नहीं कर रहे, वहां पे वो खबर दे रहे होते हैं। दरअसल इसके लिए खबर को समझना और खबर को फाइल करने तक के जो मराहिल हैं उनको समझना जरूरी है। खबर आपको वैसे भी कोई बंदा घर में या आपके कान में फोन के ऊपर आपको बता नहीं रहा होता, जो बात बता रहा होता है वो खबर नहीं होती। हमें हमारे बड़ों ने यही सिखाया और आपके पैनल के लोग भी शायद इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे जो मेरे से सीनियर्स हैं, कि जब कोई बताता है तो आपको पूरा एक प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, आपको उसको वेरीफाई करना होता है, ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन होती है, फिर आपने मौकफ लेने होते हैं दूसरी साइड के, किसी न किसी बंदे से बात जरूर करनी होती है। ये इतने जबरदस्त मराहल होते हैं कि अगर कुछ चीज थोड़ी सी भी गलत हो या वीक हो तो वो खुल के सामने आ जाती है। सोशल मीडिया आपको एंगल्स दे देता है बहुत ज्यादा, आपको पता नहीं कौन सी स्टोरी आज हो सकती है, कौन सी स्टोरी या किस हवाले से किस डिपार्टमेंट में क्या डेवलपमेंट हो रही है, आपको सोशल मीडिया से वाकई लीड मिल जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो लीड मिलती है ये वो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है जो आपको आपका सोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, बाकी आपने जो जर्नलिस्टिक काम है वो तो करना ही होता है, तो जब वो नहीं किया जाता तो फिर तबाही मचती है, और फिर तबाही मचती इस तरह से है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहां तक एजुकेशन नहीं है। मैं बशर्ते आखिरी बात करूंगा आपके सवाल के जवाब में कि देखिए मुझे आपको पता है पहले दिन से कि मैंने कभी भी मुबशर अली जैदी का अकाउंट अगर बना देखा तो मैंने कभी फॉलो नहीं करना था, जब तक मुझे डायरेक्टली पता ना लग जाता कि ये मुबशर साहब का अकाउंट है, या किसी की भी आप मिसाल ले लें कोई भी दूसरा था। हमारे यहाँ सियासतदानों के नाम से फेक अकाउंट बने हुए हैं और बीसीओ एग्जाम्पल्स हैं कि उन फेक अकाउंट्स पे कोई बयान चलता है तो टीवी चैनल उसको चला देते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल,
या तो वो वेरीफाइड अकाउंट हो या आपका खुद रब्ता रहा हो उस बंदे से और उसने कहा हो कि ये मेरा अकाउंट है, तो तब तो आप उसको एक सोर्स माने, बेसिक सोर्स माने। अगर नहीं है ऐसा तो आप कैसे चला सकते हैं? सिर्फ आपको अभी ये पता ही नहीं कि ट्विटर क्या है या फेसबुक क्या है और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठे हैं और आप तो उस पूरे निजाम को चला रहे हैं और आप वो चीजें फैला रहे हैं। ऐसा जा रहा है कि जर्नलिस्टिक जो प्रैक्टिसेस है वो फॉलो करनी होती है अगर आपको लीड मिल भी जाए। लेकिन आपका सवाल था लीड मिलती है या नहीं, नहीं लीड मिलती है बहुत ज्यादा मामलात में, बहुत इश्यूज पे लीड मिलती
और
है।
ये कि रिपोर्टर गुमराह भी होते हैं जाहिर है, ये तो बात
हो गई। जब वो एक्चुअल को फॉलो नहीं करते, जब वो उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते जो आपको जर्नलिज्म के शुरू के दिनों में, रिपोर्टिंग के शुरू के दिनों में बताया गया होता है।
अहमद रानी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अब मैं आमिर जिया साहब के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि आपने जो मुझे बात इससे पहले हम सवाल कर रहे थे आपने बताई कि मालिकान का बहुत ज़्यादा असर है, तो ये मालिकान का असर ये तो चले हम मान लेते हैं मैनेजमेंट का, ये तो हो सकता है कि आपकी पॉलिसी क्या है या एंगल क्या होना चाहिए, लेकिन क्या किसी खबर के नशर करने में भी उनका अमल दखल होता है? क्या वो ये भी करते हैं कि आपको बाज़ुकात खबर ठीक नहीं लग रही लेकिन किसी दबाव पर आपको चलानी पड़ती है?
एक आम रुझान है ना पाकिस्तान में, जब से हमारे यहाँ आप ये देखें कि बूम आया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में, उसके बाद से मालकान का जो है एडिटर की पोजीशन जो है वो बिल्कुल खत्म होकर रह गई है, और उसमें एडिटर जो है वो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा होता है। बात ये थी कि मालकान को यकीनन ये हक होता है कि जनाब वो एक ब्रॉड पॉलिसी दे देते हैं लेकिन उसकी निटिग्रिटीज में नहीं जाते। अब तो लेकिन निटिग्रिटीज में भी जा रहे होते हैं, प्लेसमेंट ऑफ न्यूज में भी जा रहे होते हैं, उसमें जो कौन सी चीज जो है वो सुर्खी लगनी है या किस चीज को अंडर प्ले होना होता है उस तक में जो होता है बाकायदा गाइड किया जा रहा होता है और मालकान ही उसको चीज को चला रहे होते हैं। तो ये भी होता है हमारे यहाँ। और उसके अलावा फिर एक और भी बात है, क्योंकि इदारती आपका निजाम हमारा कमजोर हो गया है, उसकी वजह से हम ये भी देखते हैं कि जो चेक्स एंड बैलेंसेज है, नूरानी ने बिल्कुल ठीक कहा कि रिपोर्टर को खबर मिली और वो लेकर आ गया, उसके लिए सबसे अहम दिन की डेवलपमेंट, दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपमेंट वो खबर है जो उसके हाथ में है। अब वहां पर जो प्रोफेशनल डेस्क बैठी हुई है उस चीज को प्लेस करेगी पाकिस्तान में, कराची में, दुनिया में, कि किस मकाम पर कितना हमें प्ले अप करना है उस चीज को, और उसको ये भी देखना है कि क्या रिपोर्टर ने सिंगल सोर्स पे चल रहा है या उसके पास मतलब उसने क्रॉस चेक किया है, अगर उसको जराए ने खबर बताई है तो क्या वो कहीं और से उस चीज को मैच करने की उसने कोशिश की है, वर्जन लेने की कोशिश की है, तो पूरी एक्सरसाइज नहीं हो रही होती है। एक जमाना था मुबशिर साहब हमें याद है जब मैं रॉयटर्स में और एपी में हम काम करते थे, उस जमाने में सोर्स से खबर देना अनआइडेंटिफाइड सोर्स से बहुत ही एक मायूब सी चीज होती थी, कभी कभार दे दिया जाता था लेकिन हमें मुतमईन करना पड़ता था अपनी मैनेजमेंट को या अपने सीनियर्स को जो एडिटोरियल मैनेजमेंट होती थी कि जनाब ये सोर्स है। तो मैंने देखा कि ये 9/11 के बाद वहां पर भी जो मयार था उस चीज का उसमें कमी आई, और फिर हमने देखा कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस सोर्सेज को, इनोनिमस सोर्सेज को करके देने दिया जाने लगा उन बैन अल-अक़वामी इदारों में जो कि मयार हुआ करते थे हमारे पाकिस्तानी इदारों के लिए भी कि जनाब यहाँ पर ये चीज उनको फॉलो करना है। तो ये चीज भी हमने देखा कि एक इन्हितात आपको उधर भी नजर आया है। तो एक ट्रेंड है हमारे यहाँ, और जितना ज्यादा आप देखेंगे कि अब चूंकि इंफॉर्मेशन में वो जो एक डोर कीपर्स होते थे उनका जो किरदार है वो कमजोर हो गया, अपर से रहे हमारे यहाँ कोई खबर नहीं छपती या कोई आर्टिकल नहीं छपता, लोग उठाकर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, ठीक है ना। तो अब गेट कीपर्स का भी इतना ज्यादा रोल नहीं रहा है, और वो जो एक होता था ना कि भाई अखबार की पॉलिसी है और वो ये आर्टिकल नहीं ले रहा, इसलिए नहीं ले रहा है कि उसके ऊपर किसी का दबाव है, वो नहीं समझता कि हमारे मियार के मुताबिक है या वो समझता है कि दारती तौर पे कमजोर ये एक लिखा हुआ है, तो लोग उसको इस तरह से बताकर सोशल मीडिया पे डाल देंगे जैसे उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ, जबर हुआ, और बात सूत्रों में हुआ भी होता है, हो सकता है हुआ भी हो, लेकिन अमूमन ये एक राइट होता है एडिटर का या चीफ एडिटर का कि वो खबर को स्पाइक कर सकता है, आर्टिकल को स्पाइक कर सकता है, और दुनिया भर में होता ही है, सिर्फ पाकिस्तान में मखसूस नहीं है। जी
अच्छा, अगर ये बताएं कि ये भी तो हो सकता है कि बाज़ूकात न्यूज़ एडिटर से या डायरेक्टर न्यूज़ से भी गलती हो जाए, तो फिर क्या करें? अगर कोई फेक न्यूज़ या गलत खबर आपसे नशर कर दी तो हम फिर उस गलती को कैसे ठीक करें?
नहीं देखिए, बहुत ही आसान है कि अगर गलत खबर चली गई, ठीक है ना, तो उसकी आपको फौरन एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, आपको माजरत करनी पड़ेगी, आपको उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, जो कि अब नहीं होता। अच्छा, फिर एक और भी बड़ा मसला है कि आप एक होती है कि मुकम्मल झूठी खबर आपने दे दी, उसको जाहिर है कि वो उड़ जाती है विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स ना। बात खबरें ऐसी होती है कि जो आधा झूठ होती है आधा सच होती है, ठीक है ना, उसके अंदर जरा सा डिस्टॉर्शन होता है, तो वहां पर जो है आप उस खबर को कहते थे कि इसमें ये चीज सही हो गई और ये चीज गलत हो गई, तो वहां पर भी मेरे ख्याल में जो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है कि अगर हम गलती करें तो हम उसकी करेक्शन जो है वो फौरन जो है इतना दुनिया भर में होता है उसकी करेक्शन इश्यू करनी चाहिए हमें, और हमें अगर किसी के साथ ज्यादती हुई हो, पाकिस्तान में क्योंकि लाइबल डिफेमेशन के लॉज हैं लेकिन उनके तहत इतलाफ नहीं होता, अगर कोई फर्ज करें साहब भी किसी के साथ ज्यादती कर जाए, कोई इदारा कर जाए, तो उसकी इतनी सुनवाई नहीं होती, तो हमें जिस तरह मगरबी ममालिक में डिफेमेशन लाइबल लॉज जो है वो उनमें बहुत जान है और वे अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं उन इदारों की और उन सहाफियों की, तो पाकिस्तान में भी जिस तरह बरतानिया में, क्यों हमें जब हम करते हैं किसी बैन अल-अक़वामी इदारे के लिए काम, हमें क्यों सबसे पहले ये कोर्सेज कराए जाते हैं लाइबल और डिफेमेशन, किस लिए कराए जाते हैं? कि उन इदारों पर कोई मुकदमा ना हो जाए, उनको पता चला कि जुर्माना ना उन पर आयद हो जाए ना, तो इदारे इसलिए केयरफुल हो जाते हैं और वो अपने सहाफियों को भी कहते हैं केयरफुल हो, क्योंकि हमारे यहाँ वो सिस्टम भी कमजोर है चेक एंड बैलेंसेस का, तो जाहिर है ना फिर वो मालकान को परवाह होती है, ना फिर वो मैनेजमेंट भी उस मामले में जरा सा कमजोरी दिखा रही होती है, न्यूज मैनेजमेंट भी कमजोर हो जाती है और साथ ही भी फिर लैक्स हो जाता है। तो ये चीजें भी हमें, ये भी काम है कि हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ خبر کو دبانے کے لیے ریگولیٹری فریم ورک کو, وہ اس لیے ہو کہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہو, جس طرح کہ دنیا کے اور ممالک میں ہے. جی
ٹھیک ہے. ہمیں محمد عثمان صاحب نے جوائن کیا ہے جو نیو ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں. عثمان صاحب, ہم یہاں آج فیک نیوز پر بات کر رہے ہیں کہ رپورٹر کیا کبھی فیک نیوز گھڑ لیتے ہیں یا کسی اور سورس سے انہیں لیڈ ملتی ہے اور وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں, یا ظاہر ہے آپ ڈائریکٹر نیوز ہیں یا جو اخبار کے ایڈیٹر ہیں ان کے پاس فیک نیوز پہنچی ہے تو وہ کیسے اسے روکتے ہیں, یا کبھی ظاہر ان سے غلطی بھی ہو جائے گی, ہو جاتی ہوگی, تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے اندازہ لگاتے ہیں کہ کون سی خبر جعلی ہے, کون سی خبر ٹھیک ہے, اس کے کیا آپ کے پاس فارمولہ ہے؟
دیکھیں مبشر, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس اہم ٹاپک کے اوپر جو ہے مجھے بولنے کا موقع دیا ہے, اور یہاں پہ میرے بڑے اچھے اچھے دوست, مجھے شاید آواز جو سمجھ میں آئی, عامر ریاض صاحب اس سے پہلے بات کر رہے تھے, ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور استاد بھی ہیں. تو بہرحال آپ نے جو بات کی, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو بھی خبر نیوز روم میں فائل ہوتی ہے, ٹی وی ہو یا اخبار ہو, اس کا سب سے بڑا سورس ہمارا رپورٹر ہوتا ہے. تو ہم ظاہر ہے جو سی این آر میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ڈائریکٹلی تو فیلڈ میں رابطہ نہیں کرتے, اس کا رپورٹر کو ہی کھنگالتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ خبر فائل کی ہے تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, آپ اپنی خبر کے اس سچائی کے اوپر کتنا قائم ہیں, کس طریقے سے ہیں, تو اگر وہ وائس دیتا ہے تو خبر چل جاتی ہے. ایک تو یہ طریقہ کار ہے. دوسرا, ایک جو الیکٹرانک میڈیا کی دوڑ کے بعد جو معاملات بگڑے ہیں, اس میں سب سے بڑی وجہ میں اقرار دوں گا کہ جب سے رپورٹرز نے ایک تو اپنا نیٹ ورک ختم کر دیا کہ بیٹھ کے خبریں لینا, اور جو ہر بیٹ کے مختلف گروپس بن گئے, اگر کوئی عدالتی رپورٹرز ہیں تو انہوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا, واٹس ایپ کے اوپر بن گیا گروپ, اگر کوئی کرائم رپورٹرز آئے تو انہوں نے بھی گروپ بنا لیا. اس طریقے سے خبریں پول ہوتی ہیں, ایک ہی گروپ میں خبر ڈلتی ہے, وہ اگر کوئی ایک رپورٹر کسی کے ہاتھوں استعمال ہو گیا, میں لفظ استعمال کا لفظ بڑا بول رہا ہوں کہ استعمال ہو گیا, اس کو کہیں سے واٹس ایپ آیا اور اس نے وہ واٹس ایپ ایز اٹ از اٹھا کے اپنے رپورٹرز کے واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیا, تو اگلے ہی دو منٹ بعد تمام ٹی وی چینلز کے اوپر وہ ٹکرز کی شکل میں چل رہا ہوتا ہے یا بریکنگ کی شکل میں لال ڈبے گھوم رہے ہوتے ہیں. اب اس کے اندر اگر ایک ٹی وی نے چلا دی وہ خبر, تو باقی ٹی وی یہ نہیں کرتے کہ اپنے رپورٹر سے اس خبر کی بابت پوچھیں کہ جناب یہ آپ کا سورس کیا ہے وہ خبر, لیکن ایک خود سی این آر کے اندر ایک دوڑ شروع ہو جاتی ہے, یار فلانے نے چلا دیا, آپ نے کیوں چلایا. تو بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دوڑ کے چکر میں اس رپورٹر سے بھی نہیں پوچھا جاتا, ٹکر اٹھاؤ یار یہ ڈبا مار دو,
جی
اس نے چلا دی تو چلا دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بیماری اور خرابی پیدا ہوئی ہے مختلف واٹس ایپ گروپس بننے کی صورت میں. اب اس میں رپورٹرز کی بھی سیل پسندی ہے, ایک بڑا نامی گرامی رپورٹر اگر چلا رہا ہے وہ خبر, ہاں وہ غلط ہے, تو باقی اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر کے اس کو ٹکر اٹھا لیتا ہے, یا کوئی ایک بڑا ٹی وی جو ہے وہ خبر بھلے غلط چلا رہا ہے تو اس کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر کے جو ٹی وی چینلز ہیں اس کی خبر کو یقین مان کے اسی طریقے سے ڈبے گھمانا شروع کر دیتے ہیں, بعد میں اگر وہ ٹی وی واپس آ گیا تو باقی بھی واپس آ جاتے ہیں. میں مثال دینا چاہوں گا اس صورت میں کہ لاہور کے اندر ڈیفینس کے علاقے میں گزشتہ سال ایک بلاسٹ ہوا جس میں 4 سے 5 گھروں شہید ہوئے.
جی
اسی بلاسٹ کی جب خبریں چل رہی تھیں تو ایک دم سے ایک ٹی وی چینل پر ایک ڈبہ گھما بشمول پاکستان ٹیلی ویژن, گلبرگ کے علاقے میں بھی دھماکہ ہو گیا. اب بجائے اس کے کہ کوئی اس کی تصدیق کرتا کہ بھائی گلبرگ کے علاقے میں کہاں دھماکہ ہوا, کس جگہ ہوا, بتاؤ تو صحیح, کوئی رپورٹر جا کے کس نے, اب ہمارے پاس یہ خبر آئی, ہم نے ہمارے بالکل پاس تھا, ہمیں رپورٹر بھجوایا کہ یار گھومو, اب ان سب رپورٹر نے گلبرگ گھوم لیا, کہیں سے بھی اطلاع نہیں ملی کہ دھماکہ, لیکن اس کی خبر ایسے تمام ٹی وی چینل بشمول سرکاری ٹی وی پہ چلی کہ پورے شہر میں افراتفری کا عالم مچ گیا, ایک چوس مچ گیا. تو یہ ایک وہ مثال ہے. اب کوئی رپورٹر سٹینڈ لینے کے لیے تیار نہیں, کوئی رپورٹر جی موجود ہے جی, اچھا جی اب سی این آر اس کو مجبور کر رہا ہے کہ جناب آپ بھی پر دیں اس پہ, وہ دیکھیں فلانے نے چلا دی, آپ کو اطلاع کیوں نہیں ملی. وہ رپورٹر پر جب یہ پریشر ہوتا تو وہ جھوٹو جھوٹ کہانی گھڑ کے, اور جی ہاں ہوا اطلاع ملی ہے, پہنچ رہی ہیں گاڑیاں, اب اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ کچھ ہوا جی, گلبرگ کے علاقے میں پولیس پہنچ گئی, ریسکیو کی گاڑیاں روانہ, فلانا روانہ, 2 گھنٹے بعد کر دی جائے گی, جناب ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں یہاں پہ. تو یہ وہ پریشر ہیں جو سی این آر والوں پر, اگر سی این آر کو خبر روک لیتا ہے, میں مثال دے رہا ہوں کہ باقی 4 چینل چلا رہے ہیں, ایک ٹی وی جو ہے وہ خبر کو نہیں چلاتا, तो ऊपर से चैनल मालिक का फोन आ जाएगा, जनाब बाकी चार चला रहे हैं, आप क्यों नहीं चला रहे? आप लाख क्या कह रहे हैं कि जनाब ये खबर ठीक नहीं है, अच्छा बाकी भी झूठ बोल रहे हैं, आप भी चलाएं। तो जब अब इसके अंदर भी वजूहत तलाश करने की जरूरत है कि कहाँ प्रोफेशनलिज्म की कमी है। बहुत सारी चीजें जो है वो जुड़ी हुई हैं हमारे एडिटोरियल कंट्रोल के साथ। हमारे यहाँ बदकिस्मती से मीडिया के अंदर जो एडिटर का या डायरेक्टर का जो रोल था वो मिनिमाइज होता चला जा रहा है। बहुत सारी चीजें जो है वो चली गई हैं डायरेक्टली मालिकान के हाथ। अगर किसी ने कोई चीज चलवानी है रुकवानी है वो एडिटर को या डायरेक्टर को फोन नहीं करते आजकल, वो डायरेक्ट मालिकान को फोन करते हैं कि जनाब आपकी ये पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये वो चैलेंजेस हैं जिसका आजकल इस मीडिया को सामना है।
तो मालिकान की तो वैसी तरबियत नहीं होती जैसी एक आम सहाफ़ी की होती है जो 15-20-25 साल ज़ाहिर फील्ड में रगड़ा खाकर और फिर किसी मकाम पे पहुंचता है। वो न्यूज़ एडिटर या डायरेक्टर न्यूज़ उतना जज्बाती नहीं होता किसी खबर पर जितना कि एक शख्स एक जो सरमायाकार हो सकता है। तो इसलिए फिर ज़ाहिर वो जाली खबरें भी उनके दबाव पे बाजू का चल जाती होंगी ऐसा लगता है। तो मुझे मेरा ये ख्याल है कुछ रिपोर्टर्स ऐसे हैं जिनकी साख अच्छी नहीं होती, वो अक्सर जाली खबरें देते हैं, टेबल स्टोरीज देते हैं, लेकिन उन्हें निकाला नहीं जाता बल्कि वो इदारे उनकी खबरें बड़े एहतमाम से और बहुत नुमायाँ करके शाया करते हैं। तो आप भी बाजू का ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि क्या इंतज़ामिया मजबूर होती है बाज़ रिपोर्टर्स की जाली खबरों को छापने पर भी?
देखें असल में ये बहुत गहरा सा सवाल है, ज़रा मुश्किल सा सवाल भी आपने कर दिया है। ऐसे रिपोर्टर्स जो होते हैं जाहिर है वो मार्केट में इन रिपोर्टर के लाए जाते हैं कि जिनकी ज़्यादा खबर छपती है, जी ये फलाने हलके में बड़ा इन है। अब बाकी जो मालिकान होते हैं उन्होंने अपने 100 काम भी निकलवाने होते हैं, जाहिर है उस सूरत में जो ऐसे इन रिपोर्टर्स उनके थ्रू अपने काम निकलवाएंगे, उनकी हदायत भी की जाती है कि यार इस रिपोर्टर को ज़्यादा ज़रा आप जगह दें, इसको ज़्यादा आप शाया करें, इसके ज़्यादा आप पर करें ताकि हमें इसको आप प्रमोट करेंगे तो ये मार्केट में हमारे लिए सूदमंद साबित होगा, ये एक वजह हो सकती है। लेकिन जहाँ जहाँ पे कुछ अच्छे लोग प्रोफेशनल लोग बैठे हैं वो अपने तहीं कोशिश जरूर करते हैं कि भाई इस चीज़ों को मिनिमाइज किया जाए, जिस हद तक वो लड़ सकते हैं जिस हद तक वो रेजिस्ट कर सकते हैं करते हैं। कई ऐसी चीज़ें रोकी हैं हमने भी कि भाई खबर व्हाट्सएप, अब ये व्हाट्सएप तो एक डायरेक्ट डायरेक्टर न्यूज के भी बन गए, उनको भी डायरेक्टली खबरें आ रही होती हैं कहीं ना कहीं से। लेकिन आप एक हद तक आप खड़े तो हों कहीं पे उस खबर के ऊपर, आप तस्दीक तो करें, उस रिपोर्टर से पूछें तो सही, उससे सवाल तो करें कि जनाब ये आपने खबर फाइल की इसमें ये चीज मिसिंग है,
ठीक
आप ये कैसे कह सकते हैं? वो खबरें रोकी भी हैं और रोकी और बहुत सारी, मैं अभी देखे ना इस चीजों में अब चैलेंजेस और बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आ गए हैं। लेकिन अगर आप संजीदगी से बैठें, आप अपने CNR के लोगों की तरबियत करें कि भाई आपने इस सिचुएशन के अंदर पैनिक नहीं होना, सबसे पहले की दौर में शामिल नहीं होना, तो उससे निकलें और सही खबर अपने नाज़रीन को अपने व्यूअर को आप देंगे तो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी कायम होगी। अब किसी को अब जैसे आपको याद होगा कि बहुत सारे जितने बड़े सियासतदान, अब मुझे याद है कि वली खान साहब का इंतकाल हुआ तो एक चैनल ने सबसे पहले खबर दे दी, पता चला होगी तो जिंदा वेंटिलेटर पे है। ये हमारी एक टीवी के अदाकारा कंवल, उनकी डेथ की खबर सारे चैनल्स में चला दी है, रिपोर्टर्स ने पेपर भी दे दिए है, तो बाद में पता चला कि जनाब वो जिंदा है। तो किसी ने ये जहमत द्वारा नहीं की। अब वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक हम इन व्हाट्सएप ग्रुप्स की गुलामी से नहीं निकलेंगे तो रिपोर्टर वो जो अपना जिसका असल काम है वो नहीं कर पाएगा। नेट वर्क जब तक नहीं होगा, कुछ ज्यादा तस्दीक नहीं होगी। जो खबर के जो असूल है कि जब हमें सिखाया गया, जो हमने सारी जिंदगी पढ़ा,
तस्दीक
आपके पास खबर वो कहना तो तस्दीक कर लिया करो, तो तस्दीक वाला जो एलिमेंट है वो माइनस होता चला जा रहा है इस दौर के अंदर।
जी हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब ने, तजिया कार हैं, PFUJ के साबिक सदर हैं, अहम पोजीशंस पे काम कर चुके हैं। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया। हम फेक न्यूज़ की बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने के बाद फेक न्यूज़ का एक तूफ़ान है और उसमें सहाफ़ियों पे बहुत भारी जिम्मेदारी है कि वो अपने नाज़रीन तक, अपने पढ़ने वालों तक हकीकी खबरें कैसे पहुँचाएँ। तो ऐसा लगता है कि सहाफ़ी और मीडिया भी, हमारा कौमी मीडिया भी बाज़ोकात इस्तेमाल हो जाता है उन लोगों के हाथों जो जाली खबरें फैला रही हैं। आप इत्तफाक करेंगे इस बात से?
शुक्रिया। देखिए अभी मैं आज सुबह या दोपहर को डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और उसमें एक CNN के रिपोर्टर को, उन्होंने CNN को भी फेक कह दिया और रिपोर्टर को भी फेक कह दिया
जी।
और फेक न्यूज का बहुत ज्यादा जो चर्चा रहा है वो खुद अमेरिका के अंदर, खासतौर पर ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत ज्यादा रहा है। ओवरऑल बुनियादी तौर पे एक रेस लगी हुई है मीडिया में,
हेलो
जी जी फरमाइए
जी जी, उसमें एक तरह से रेस अगेंस्ट टाइम जिसे हम कहें कि आप इस वक्त सहाफत नहीं बल्कि सहाफत के नाम पे कारोबार हो रहा है, और कारोबार में सिर्फ जो है वो मुनाफा और नुकसान देखा जाता है, उसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि इकदार क्या हैं, सहाफती इकदार क्या रही हैं, सहाफती उसूल क्या हैं, सहाफती जाब्ते क्या हैं, कहाँ जो एडिटोरियल कंट्रोल किस तरीके से है, खबर को किस वक्त जाना चाहिए किस वक्त नहीं जाना चाहिए, तस्दीक के बगैर खबर जाना कितना बड़ा खतरनाक खतरा हो सकता है कितना नहीं हो सकता, ये सारी चीजें बिल्कुल पसे पुश डाल दी गई हैं। इस वक्त सिर्फ एक चीज ये है कि आप दूसरे चैनल को किस तरीके से भीट करते हैं और कितना ज्यादा आप बहुत ज्यादा आप डोमिनेट करते हैं। कोशिश ये होती है अक्सर कि अगर आपने किसी कोई बड़ा लीडर आपको मिल गया है बीपर पे तो वो कोशिश करते हैं कि उसको ड्रैग करें ताकि दूसरा चैनल उसे पिक ना करें। दूसरा एक जो रुझान है वो ये कि खबरों की को तस्दीक के बगैर चलाना, और वो भी इसी रेस का हिस्सा हो गया है। तीसरा चीज ये कि खबर एग्जिस्ट ही नहीं करती और हम खबर चला देते हैं। अभी इस केस में आप देखें और ये इसमें सिर्फ लोकल पेपर्स नहीं है, इसमें सिर्फ पाकिस्तान के कौमी अखबारात ही नहीं है बल्कि बैन अवी सतह पे भी हमें ये नजर आ रहा है। अभी ये आसिया बीबी वाला जो केस हुआ
जी,
उसमें आज सुबह के अखबारात में भी ये खबर थी कि जी वो उसको रिहा करके मुल्क से बाहर चली गई है। इससे पहले भी हमने ये देखा, और इवन बीबीसी पाकिस्तान में इस चीज के हवाले से बहुत से उन्होंने चलाई, किसी ने इसको तस्दीक करने की कोशिश नहीं की। देखिए एक बुनियादी उसूल जो सहाफत का है वो ये है कि अगर कोई खबर खास तौर पे इस तरह के सेंसिटिव नेचर की हो तो उसमें पहली चीज उसूल ये है कि उसके अंदर आपके पास कोई डायरेक्ट कोट हो
जी।
या कम से कम अगर आप कोई डायरेक्ट कोट आपके पास खबर है लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हो रही तो उस अगर कनेक्टेड आदमी से या कोई वजीर इत्तलात है, वजीर दूसरे हैं, वजीर दाखिला है या सेक्रेटरी दाखिला है या कोई इसके, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो ये कहेगा कि नहीं जी ये खबर दुरुस्त नहीं है, ये अभी हमारी इसको तस्दीक नहीं हुई है, या वो नो कमेंट कर देगा। तो उससे आपकी खबर में एक बैलेंस आ जाएगा, लेकिन इस वक्त मसला बैलेंस का नहीं है। अच्छा, अब ये खबर का इस खबर को कि आप सेंसिटिविटी देखें कि ये खबर जिस तरह चली, बाद अखबारात में आज हेडलाइंस थी कि वो मुल्क से चली गई है
जी।
और इससे बहुत ज्यादा पैनिक भी मच सकता है, बहुत ज्यादा इसमें इस सूरत हाल खराब भी हो सकती थी। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको याद हो कुछ अरसे पहले जब कुलसुम नवाज साहिबा जिंदा थी तो हमारे यहाँ बहुत से चैनल ने उनको मार दिया था
जी जी,
और ये कहा गया कि जी वो तो अब सिर्फ उसको ड्रैग कर रहे हैं और वक्त का इंतजार कर रहे हैं, इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं और फिर इलेक्शन के दौरान जो है उसकी बॉडी लेकर आ जाएंगे। तो इस हद तक हम चले गए हैं, और जब ये इस चीज की ये खबर गलत भी साबित हो जाती है तब भी हमारे यहाँ एडिटोरियली कोई किसी के खिलाफ, उस रिपोर्टर के खिलाफ, उस एंकर के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं होती। तो वो ये देखते हैं कि यार जिसने जब ये खबर चलाई थी या ये प्रोग्राम किया था कुलसुम नवाज साहिबा के इंतकाल के ऊपर
तो रेटिंग आ गई,
तो उसकी रेटिंग बढ़ी आ गई थी, तो जो मालिक है उसके नजदीक सिर्फ ये है कि इसकी रेटिंग की वजह से उसको कमर्शियल वोट मिल जाएंगे। पहले भी कमर्शियल एक होते थे, जाहिर है इश्तहारात जरूरी होते हैं। आज सबसे बड़ा इस वक्त मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में सबसे बड़ा बुरहान यही है कि सरकारी इश्तहारात बिल्कुल रोक दिए गए हैं
जी,
जिसकी वजह से एक बड़ा माली बुरहान आ गया है, एक तरह से माली सेंसरशिप लग गई है। तो दूसरी तरफ लेकिन कभी भी एडिटोरियली ये दबाव नहीं आता था मालिक की तरफ से कि जी अखबार को इश्तहार कम मिलने शुरू हो गए हैं, आप खबरों को इस अंदाज में पेश करें, वो एडिटोरियली होता था। अब सिर्फ पाकिस्तान में वाहिर डॉन अखबार ऐसा है कि जहां आज भी एडिटोरियली चीजों को जांचा जाता है, जहां आज भी मालकान की इंटरफेरेंस नहीं होती, बाकी कोई भी जगह ऐसी नहीं है। तो और मालिक भी ऐसे आ गए हैं, बाद मालिक जो पुराने थे उनको बहरहाल उन्होंने अखबारात को जो है चलाया है बीटी प्रिंट, लेकिन अब जो बहुत बहुत एक नई खेप आई है उसके नजदीक प्रोफेशन जो है वो सिर्फ बिजनेस का एक जरिया है या अपने दूसरे बिजनेस को के बचाव का एक जरिया है। तो मीडिया को एक ऐसा कारोबार बना दिया गया है जिसमें जिसमें किसी का भी कोई एजेंडा हो, असल असल चीज जो है ये कि इसके जरिए मुझे पैसा कितना मिल रहा है।
मजे साहब, मेरा ये यानी आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि प्रिंट मीडिया में रेस नहीं होती और टेलीविज़न में रेस है, इसलिए बाज़ोकात या अक्सर औकात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गलत खबर फेक न्यूज़ चला देता है या किसी वजह से इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन अब अगर अखबार में भी ऐसी खबरें छप रही हैं कि जैसे आपने कहा कि आसिया बीवी मुल्क से बाहर चली गई और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि नहीं ऐसा वाकया पेश नहीं आया, तो अब ये इसका मतलब है कि प्रिंट मीडिया भी इसका शिकार हो रहा है। ये सोशल मीडिया क्या हमें गुमराह कर रहा है, क्या वो इसका ज़्यादा ज़िम्मेदार है और वो मेन स्ट्रीम मीडिया को लीड कर रहा है, आप मुत्तफिक हैं इस बात से?
नहीं, असल चीज़ ये है कि देखिए सोशल मीडिया एक एक्सप्रेशन है, लोगों का एक्सप्रेशन है, लोग उसमें जो भी चीज़ डालते हैं वो कहीं किसी एडिटोरियल कंट्रोल में नहीं होती, वो कंटेंट जो है वो कोई कंट्रोल नहीं होता। आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं लेकिन उस इंफॉर्मेशन को आप उस वक्त तक ट्रांसलेट नहीं कर सकते और ना करना चाहिए कि जब तक आपको उस खबर की खुद तस्दीक ना हो जाए। हो ये रहा है कि हम सोशल मीडिया से चीज़ें उठा के मेन स्ट्रीम मीडिया पे चला देते हैं और बाद में जब ये बाउंस बैक होती है तो हम कहते हैं ये तो सोशल मीडिया पे चल रही थी। ये चीज़ नहीं, ये आप उस जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं हो सकते अगर आपने सोशल मीडिया की कोई खबर बगैर तस्दीक के अपने चैनल पे चलाई, अपने अखबार में छापी। तो सोशल मीडिया आपको गुमराह नहीं कर रहा, आप खुद गुमराह होने को तैयार हैं, आप खुद काम करने से जो है वो हिचकिचा रहे हैं या काम करना अवॉइड कर रहे हैं। सोशल मीडिया में चीज़ें चलती हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें सही होती हैं, बहुत सी गलत होती हैं। अब आप उस सोशल मीडिया को देखें, उसमें से चीज़ें निकालें, उसकी तस्दीक करें और जब तस्दीक हो जाए तो आप उसे चलाएं, और वरना आप उसको जेरे बहस लाएं ही नहीं, क्योंकि आप जब जेरे बहस लाते हैं तो फिर वो एक संजीदा चीज़ बन जाती है, फिर ऐसा लगता है कि जैसे हाँ इस खबर में जो है ये खबर जो है तस्दीक शुदा है। तो हमारे यहाँ ये एक ज़माने में ये होता था कि अखबारात में जब रिपोर्टर ज़्यादा काम नहीं करते थे तो प्रेस रिलीज आती थी तो वो प्रेस रिलीज से पीआर हटा देते थे और उसमें स्टाफ रिपोर्टर लगा देते थे, जैसे ये उन्होंने ही खबर तलाश की है, हालांकि वो प्रेस रिलीज में होती थी।
तो फिर गलती तो उन्हें ऑन करनी पड़ती होगी, अगर गलती हो जाती होगी तो उन्हें करनी पड़ती होगी,
वो करती थी, तरदीद करनी पड़ती थी बात सिचुएशन में। बात सिचुएशन में आपको कानूनी नोटिस मिलता था, नोटिस आप उस पे बाद आपको माफी मांगनी पड़ती थी। चैनल्स में माजरत माफी और इसका माँ सिवाय चंद एक जो बहुत ही नाजुक मामलात हैं उसके अलावा ये रुझान ही नहीं है कि आप गलत खबर पे जो है माजरत करें, ये रुझान ही नहीं है कि आप गलत खबर पे अपने रिपोर्टर या उसके उसकी सरजनिश करें
जी।
ये हमारे यहाँ रुझान ही नहीं है, बल्कि सिर्फ ये देखा जाता है कि आपने दूसरे चैनल को बीट किया है नहीं किया। उसमें होता यह है जो उसमें कि खास तौर पे जो एक बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर किसी के इंतकाल की खबर है
जी,
किसी के मरने की खबर है तो उसमें जब तक या तो फैमिली डायरेक्टली उस चीज की तस्दीक ना करे या जो डॉक्टर है अगर कोई हादसा हो गया है तो डॉक्टर उसकी तस्दीक ना करे, उसके बगैर किसी के इंतकाल की खबर चलानी ही नहीं चाहिए। लेकिन हमें इन चीजों की तो बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो जरूरत इस चीज की है कि मीडिया और मीडिया के मालकान इस चीज को बहुत संजीदगी से लें, क्योंकि आगे चल के मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर जाएगा और रिली बहुत लूज कर रहा है। लोग संजीदा नहीं ले रहे, लोग आप पे इल्जाम तरह तरह के रख देते हैं, आपको ये इल्जाम सामना करना पड़ रहा है कि आप फुला पार्टी के लिए काम करते हैं, आप फुला पार्टी के लिए काम करते हैं, आपका फुला एजेंडा है, और ये इसलिए
और
हो रहा है कि हमारे यहाँ
कभी कभी है
ऐसी आ गई है जो फेक न्यूज पर यकीन कर रही है।
जी जी। अच्छा मजे साहब, मुझे एक नाजुक सवाल ये है कि बाज़ोकात खबर दुरुस्त होती है, फेक नहीं होती, लेकिन उसे मसलहतन छुपाया या रोका जाता है। तो अब वो उस खबर को रोकने के चक्कर में जो खबर या जो भी चीज़ नशर की जाती है उसे फेक न्यूज़ कहें, सेल्फ सेंसरशिप कहें, क्या उसका फिर नाम रखा जाएगा?
नहीं, अगर खबर दुरुस्त है तो फेक न्यूज़ तो नहीं हुई, ये तो तय है कि वो फेक न्यूज़ नहीं हुई अगर वो खबर दुरुस्त है। अब उस खबर को चलाने या ना चलाने की दो तीन वजूहत हो सकती हैं। एक तो फर्ज करें अगर वो सिक्योरिटी के मामलात की खबर है तो आपको, आपके पास अगर उसके बारे में ये डायरेक्ट वो नहीं है और आपको ये अंदाजा है कि इस खबर के चलने से सिक्योरिटी के मामलात जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज आड़े आ जाएंगे
जी।
तो आपने फैसला करना होता है कि ये खबर चलानी चाहिए और अगर चलानी चाहिए तो किस अंदाज में चलानी चाहिए। देखिए खबर चलाने का भी अपना एक अंदाज होता है। आपने खबर दी, आपने किसी खबर को लो की में रखा और किसी खबर को आपने रेड उसने ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे चला दिया। तो एक चीज ये होती है कि आप खबर भी दे दें और उस पर ज्यादा शोर भी ना मचे। तो ये उस खबर की सेहत पर डिपेंड करता है कि उस खबर में कितनी ज्यादा सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है उसके अंदर, और खबर देने का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है क्योंकि टेलीविजन पे प्रेजेंटेशन बड़ी काउंट करती है। एक तो टिकर्स होते हैं, फिर जब आप खबर दे रहे हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है ये बड़ा काउंट करती है। फिर सिर्फ सेंसरशिप या सेल्फ सेंसरशिप सिर्फ हुकूमत या दूसरे हलकों से नहीं होती, ये आपके कारोबारी इंटरेस्ट भी उसमें हामिल आ जाते हैं। जैसे जो कंपनीज आपको इश्तहारात दे रही हैं लाखों करोड़ों उसके उसके उसकी उसके खिलाफ अगर कोई खबर आती है तो वो खबर नहीं जाने दी जाती। फर्ज करें बैरियर टाउन है, बैरियर टाउन करोड़ों के इश्तहारात देता है अखबारात को, चैनल्स को, लिहाजा अगर बैरियर टाउन के अंदर कोई ऐसा वाकया हो जाता है
तो
वो खबर आपको नहीं नजर आएगी, उसका ब्लैकआउट हो जाएगा। फिर मौलाना समीउल हक तो क्योंकि एक प्रोमिनेंट लीडर थे तो उनकी खबर आई, लेकिन अगर इस हवाले से ये चीज नहीं आती, अगर कोई इस तरह की, या किसी को अगर फर्ज करें एक आध अखबार को छोड़ के अगर उसके बारे में, या टेली कम्युनिकेशन के हवाले से, या वो सारी चीजें, वो सारी पार्टी जो अखबारात को या चैनल्स को इश्तहारात दे रही हैं उनके खिलाफ खबर के अगर आपके पास तमाम सबूत भी हैं, शवाहद भी हैं, तो वो खबर नहीं चलने दी जाती
जी। ठीक है मदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हमें एजुकेट किया इस इशू पर। हमें ज्वाइन किया है अब वजाहत मसूद साहब ने, जो सीनियर कॉलम नवीस हैं, एक न्यूज़ वेबसाइट हम सब के चीफ एडिटर हैं। वजाहत साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम फेक न्यूज़ की बात कर रहे हैं और ज़ाहिर है ये फेक न्यूज़ का नाम हमने सोशल मीडिया के आने के बाद ही ज़्यादा सुना है। उससे पहले अगर कुछ खबरें छपती थी ज़राए के हवाले से या कुछ रिपोर्टर अपने मकासद कुछ हासिल कर लेते थे या उन्हें इस्तेमाल कर लिया जाता था तो उन्हें किसी और नाम से या किसी और तरीके से याद किया जाता था, लेकिन अब सोशल मीडिया आ गया है और आप एक न्यूज़ वेबसाइट भी चला रहे हैं, तो मुझे ये बताएं आपके पास जब खबरें आती हैं और या कॉलम लिखे जाते हैं फेक न्यूज़ की बुनियाद पर, तो आपको कैसे अंदाज़ा होता है कि ये गलत है या ठीक है, कैसे फैसला करते हैं?
देखिए बहुत साझा सी बात है, तो ये कि खबर आपको किस जरिए से मिल रही है। दुनिया भर में सहाफत का जो शोबा है उसमें न्यूज एजेंसी मैटर करती हैं। अब कल शाम 10 बजे के बाद हमें इत्तला मिली कि आसिया बीबी जो है वो मुल्तान जेल से रिहा कर दी गई।
ठीक है,
मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पे हमारे पुराने साफी मुल्तान के खान रिजवानी साहब के साथ जाए, जमशेद रिजवानी जो है जिनसे फिर वॉइस ऑफ अमेरिका से आपने भी बात की, उनसे रब्ता करने की कोशिश की। एक भी नहीं जो हमारे दोस्त बैठे हैं क्योंकि एसोसिएटेड प्रेस जो है वो मुल्तान में उसका ब्यूरो मौजूद है, उन साहब को फोन किया। उस भाई ने कहा मैं 10 मिनट के बाद आपको बताता हूँ, तो उन्होंने कहा 100% कंफर्म खबर है, उन्हें मुल्तान जेल से रिहा कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा अब ये एक सादा सी बात है कि एक अखबार में इसकी एक जिम्मेदारी है कि एक खबर जिससे जो है जिसकी रेपरकशन हो सकती हैं, जिसके अवाकिब हो सकते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो उसको वो कितनी जिम्मेदारी से देता है। लेकिन हैविंग सेड दिस, लेट्स कम टू द फंडामेंटल क्वेश्चन। एक खबर वो है भाई जो उस मुआशरे में दी जा रही है जहां सिटीजन और स्टेट
जी
और गवर्नमेंट और सहाफी ये चारों, यानी शहरी, सहाफी, हुकूमत और रियासत, खबर देने के फर्ज से और खबर देने के मनसब से इत्तफाक करते हैं। जो लोग नजरियाती रियासतों में रहते हैं, नजरियाती रियासतें क्या होती हैं, एक मफरूजा होता है कि एक ग्रुप ने रियासत पे कब्जा कर लिया है और जो उसका नैरेटिव है वो भी दुरुस्त है, वही रियासत के मुफाद में है, ठीक है। या वो रियासतें जहाँ डिक्टेटरशिप होती है वहाँ अगर आप डिक्टेटर के बारे में खबर चलाएं कि कोई फला हवाई अड्डे पे डिक्टेटर साहब पे उनके मुहाफ़िज़ों ने फायरिंग कर दी, आपका क्या ख्याल है कि वो हुकूमत जो है वो ये खबर चलने देगी?
कभी भी नहीं।
आप 1967 में छपने वाली अयूब खान की ऑटोबायोग्राफी सपोजिटली फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, उसको उठाएं, उसमें आपको एक सादा सी बात मिलेगी कि अयूब खान साहब कहते हैं कि जब से सारी सियासतदानों के मामलात मेरे सामने लाए गए तो मैंने कहा कि क्या सिर्फ यही निकला है इसमें से कि स्कूल के बच्चों को जो है वो सरकारी गाड़ी पे छोड़ा जा रहा था, कि ये वो आप तो हम तो कह रहे थे कि सियासतदान लूट के खा गए। डिस इंफॉर्मेशन जो है वो गैर जमहूरी मुआशरे में डिक्टेटरशिप का हथियार है।
बिल्कुल।
तो जमहूरी मुआशरे में जो खबर के मियारात हैं और ये जो कंसेंसस होना है ह्यूमन कलेक्टिव के तमाम दर्जों में तमाम शोबों में कि खबर मुकद्दस है, कि जैसे अभी मुझसे पहले भाई जो बात करते अगर मैं गलती नहीं करता तो मज़हर अब्बास साहब बात
जी, जी, मज़हर साहब
हाँ मज़हर भाई जो फरमा रहे थे वो बिल्कुल दोस्त है कि मुझसे किसी ने नहीं कहा कि ये जो मौलवी पीर अफसर कादरी साहब मैं इनको जो है वो आमद चीमा 2006 वाले के की मौत का जो है वो शाख्साना कहा करता हूँ। इन साहब ने जो कुछ पाकिस्तान के आला मनसबदारों के बारे में कहा हमने उसको नहीं जाने दिया, हमने उसकी खबर नहीं दी जब तक प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना वो खुद अपने खिताब में उस पर बात नहीं कर ली। तो सहाफी जिम्मेदार है, लेकिन एक गैर जमहूरी मुआशरे में या एक ऐसे मुआशरे में जहाँ जहाँ खबर पे इजारा दारी कायम कर दी जाती है, जहाँ कौमी मुफाद की जो डेफिनेशन है तारीफ है उस पर इजारा कायम कर दिया जाता है, वहां पे सहाफी क्या ये नहीं कहे कि हमारे मुल्क में 1984 में लिसानी बुनियाद पे क्या बीज बोए जा रहे हैं? अब आप फरमाइए वो फेक न्यूज है या वो सही खबर है? अब आप फरमाइए कि जब 1979 में ये कहा जा रहा हो कि फराम मशरक के लोगों पर नजर रखी जाए और हमें ये बात ऐसे मुजफ्फर 2014 में आके अपनी किताब में बताएं, तो हम तो 1979 में यहाँ बैठे थे ना इस मुल्क में, तो वी न्यू कि ये क्या किया जा रहा है। तो मैं दोबारा अर्ज करता हूँ सहाफियों को भी इस पर बहुत केयरफुली चलना चाहिए। ये फेक न्यूज का लफ्ज तो खैर ट्रंप साहब ने निकाला ना, उससे पहले डिस इंफॉर्मेशन कहा जा रहा था, स्पिन कहा जा रहा था, ठीक है। अपने मुफाद की भी खबरें फैलाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या वो सहाफी जिसने ये कहा था कि वो बच्ची में शर्म आती है, मैं उस गरीब का नाम रोज पुजारी के साथ पहले बहुत नाइंसाफी हो चुकी है, अजान अली की प्रेगनेंसी की खबर दे दी टीवी पे
जी जी जी,
और उस सहाफी ने दी जो सुप्रीम कोर्ट में आया तो माफी मांगने से इनकार कर दिया, ठीक है
जी।
उस सहाफी को जो है वो जाने दिया जाता है, उसका तीन महीने के लिए उसको आप स्क्रीन कर दिया जाता है, और वो सहाफी गद्दारी का मुकदमा झेल रहा है जिसने जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर के मुंह से एक ऐसी बात सहाफियाना अपने फराइज के दौरान सुन के रिपोर्ट की है जिसने मुल्क के मिसाल को इसलिए कोई नुकसान है कि हम तो उस मामले से जो है वो महमूद दुर्रानी को फारग कर चुके हैं। तो आई वुड से कि ये इसको तकसीम करनी पड़ेगी हमें जमहूरी मुआशरे की, नीम जमहूरी मुआशरे की और गैर जमहूरी मुआशरे की, क्योंकि जो इस दुनिया में बहुत से मुआशरे ऐसे मौजूद हैं। फरमाइए कि ये जो जमाल साहब सहाफी जो तुर्की में खतर किए गए हैं इनकी खबर सऊदी अरब वाला देखा तो क्या वो फेक न्यूज में गायब कर,
लेकिन वो तो हम बात कर चुके ना डिक्टेटरशिप और बादशाहत वो तो एक अलग बात होगी, हम तो जमहूरी मुआशरे की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी फेक न्यूज है
किस में गिना जाएगा
जमहूरी मुआशरे जी जी
साहब।
अच्छा वजाह साहब, मैं हमें आमिर हाशिम खाकवानी साहब ने ज्वाइन कर लिया है, ज़रा उनसे भी पूछते हैं। आमिर भाई आप भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और जाहिर है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से भी मुंसलिक हैं, तो ये फेक न्यूज़ का जो बहरान है तूफ़ान है और वो जो सबको परेशान करता है उसे आप कैसे पहचानते हैं और उसका शिकार होने से कैसे बचते हैं?
देखिए अब तो वैसे ये तो हकीकत है कि अब इसको फेक न्यूज को पहचानना मुश्किल होता जा रहा है, और खासतौर पे सोशल मीडिया पे जो ویڈیوز یا فوٹیج چل رہے ہوتے ہیں, کلپس چل رہے ہوتے ہیں, ان میں بعض اوقات یہ بھی نظر ہی ہو پاتا ہے کہ یہ دو سال پرانا ہے واقعہ یا کہیں اور کا, اور صرف ہمارا نہیں, آپ کو یاد ہوگا, آپ جانتے ہوں گے کہ انڈیا میں بھی اس طرح کا ایشو بنا کہ معاملہ کہیں اور کا تھا اور وہ وہاں پہ پھیلایا گیا کہ یہ وہاں کا لوکل ایشو ہے, اور اس پہ کئی لوگوں کی اموات بھی ہوئی. تو چیزیں مشکل تو ہوتی جا رہی ہیں, اس میں کچھ شک نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ بھی خاص طور پہ جب لوگ لکھنے والے, فری لانس لکھنے والے ایک طرح کے, یا اپنے جو ایک چھوٹے چھوٹے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں انڈیویجل اپنی والز پہ لکھنے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اور ان کی وہ بھی فالوئنگز بھی ہزاروں میں ہو گئی ہے. یعنی فیس بک پہ اب کافی سارے, میں پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, بلاگر جیسے ہیں جن کی فالوئنگ ہزاروں میں ہے, 15-20-25-40-50,000 تک بھی لوگ چلے گئے ہیں. جب وہ اس ظاہر ہے وہ جس نے کوئی لکھا وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچی فوری طور پہ, اور پھر آگے مزید شیئر ہوگی اور شیئر در شیئر ہوتی پھیلتی گئی. اور پھر میں سن رہا تھا جہاں سب نے جو باتیں کی وہ ٹھیک ہے کہ جہاں پہ خبریں حکومتی ذرائع سے نہیں, اگر بڑے وقت ان کی وضاحت نہیں آئے گی, چیزیں سامنے نہیں آئے گی, خبروں کو روکا جائے گا. مطلب ابھی یہ جو یہاں پہ چلتے رہے, جو یہ تحریک لبیک کے دھرنے پر رہتے اس آسے کیس کے بعد, اگر مین سٹریم میڈیا پہ اتنی زیادہ سخت پابندی ہو کہ خبریں نہیں دینی اور بالکل بائیکاٹ کرنا ہے اس کا, تو پھر ظاہر ہے لوگ پھر خبر کے لیے ادھر ادھر ہی دیکھتے ہیں مختلف ذرائع پر. اس میں سوشل میڈیا تو ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہر ایک کی اب رسائی میں ہے. ابھی ابھی جی کے پہلے اب یاد ہوگا زمانے میں ریڈیو کے سیل لوگ منگواتے تھے, ڈلواتے تھے, اور بی بی سی سنتے تھے یا مختلف جگہوں پہ. اب ہر ایک کے پاس موبائل ہے, اور واٹس ایپ سے ان کو فوٹیج بھی مل جاتی ہیں, اور فیس بک پہ چیزیں آ جاتی ہیں, ٹویٹر سے آ جاتی ہیں. تو وہ اس لیے نا یہ مسائل تو یہ سب کے ہیں. اب میرا خیال ہے ابھی پہلے سال ڈیڑھ سال پہلے تک میرا خیال تھا کہ شاید سوشل میڈیا کی جو ویب سائٹس ہیں, نیوز ویب سائٹس مختلف یا بلاگز کی ویب سائٹس, یہ اس عمل کو روک تھام کرے گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وہ بھی شاید بند باندھنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہے, اور خاص طور پہ ہمارے یہاں جو نیوز ویب سائٹس ہیں وہ تو اور زیادہ سنسنی پھیلاتی ہیں, اور ان کا مطلب میرے خیال ہے کاروبار ہی صرف کنفلکٹ پہ چل رہا ہے. جو بلاگز والی یا مضامین کی خالص جو ویب سائٹس ہیں وہ ظاہر ان کی ویور بھی کم ہے, اور اپنے طور پہ وہ کوشش کرتی ہیں ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرنے کی اور مختلف نقطہ نظر بھی دینے کی, لیکن یہ کام اب مشکل ہوتا جا رہا ہے, مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے.
اچھا, یہ ہم وجاہت صاحب سے بھی پوچھیں گے سوال, لیکن ایک میں آپ سے اور سوال کرنا چاہوں گا کہ یعنی میں یہ سمجھا آپ کی اس بات سے کہ سینسرشپ اگر ہوگی, کسی بھی طرح کا دباؤ اگر ہوگا مین اسٹریم میڈیا پہ, اور وہ خبریں نشر نہیں کر پائے گا, تو پھر جعلی خبریں, فیک نیوز سوشل میڈیا سے پھیلیں گی. ٹھیک بات ہے یہ؟
جی جی, یہ بالکل ظاہری بات ہے. جب آپ کے پاس دیکھیں نا, ایک واقعہ ہو رہا ہے, ہیپننگ ہو رہی ہے, جس طرح بھی میں نے مثال دی دھرنے کی, اور وہ کہیں سے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا آپ کو, چینل پہ کچھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے, تو لوگ آخر جاننا تو چاہیں گے نا, اس کے لیے کون سا ذریعہ ہے. دوسرا ذریعہ ان کے پاس یہی ہے کہ بھائی وہ فوری طور پہ سوشل میڈیا سے ادھر ادھر جا کے چیک کریں گے. یہ ایک فیکٹر ہے کہ یہ خاص طور پہ ان معاملات زیادہ ہو جاتے ہیں جب کوئی ہنگامی حالات چل رہے ہو, یا ہنگامی واقعات چل رہے ہو, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں خاص طور پہ فوج کے حوالے سے, عدلیہ کے حوالے سے, کچھ اور چیزوں میں آپ جانتے ہیں کہ یا سینسر ہے, کافی زیادہ سختی ہے اخبارات میں بھی اور چینل سے بھی بات کرنا, رپورٹ دینا یا کوئی لکھنا یا کمنٹ بھی ایون مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی بعض اوقات لوگ انفارمیشن کے لیے اور اس کے لیے دوسری جگہوں پہ جاتی ہیں. اب اس میں وہ درست خبر کے لیے جاتی ہیں, لیکن وہ اس میں فیک چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. لوگوں کو بھی میرا خیال ہے تربیت کرنے کی ضرورت ہے, لوگ اس کو بہت زیادہ تیزی سے بائی بھی کرتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ہے نا کہ سوشل میڈیا پہ یوز کرنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں, میرے خیال لاکھوں میں شاید بھی ملینز بھی ہوں گے, جو اخباروں کے ریگولر ریڈر نہیں تھے, یا جو ٹی وی چینلز کی ٹاک شوز وغیرہ شاید اتنا نہ دیکھتے ہوں, تو ان میں اس میچورٹی کی بھی کمی ہوتی ہے. تو اس لیے کوئی بھی فیک لگے جس میں جو بظاہر درست لگ رہی ہو اور پرکشش ہو, جس میں کوئی سنسنی اور مسالہ ہو, اس کو وہ فوری طور پہ بائی کر لیتے ہیں, فوری طور پہ ایمان لے آتے ہیں اس پہ.
ٹھیک ہے عامر بھائی, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور وجاہ صاحب, آپ سے بس میں آخری سوال یہ کروں گا, جو عامر بھائی نے بات کی ہے کہ نیوز ویب سائٹس بھی فیک نیوز کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہی ہے, میرے پاس ایک منٹ ہے, اگر آپ پلیز جلدی سے اس کا جواب دیں.
جی ہاں, ایسے بہت دفعہ ایسے ہو جاتا ہے, لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ مین اسٹریم میڈیا میں بھی خبر باؤنس ہو جاتی ہے, خبر کی تجویز نکل آتی ہے, اور بہت دفعہ خبریں جو ہے وہ پلانٹ کی جاتی ہیں.
جی کر لوں.
ٹھیک ہے نا, یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, لیکن اس کا چاکس بات یہ کہ کسی آؤٹ لیٹ کا, میڈیا آؤٹ لیٹ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے, اور یہ برسوں کی مزید پروسیس ہوتا ہے. میں اتفاق کرتا ہوں عامر صاحب سے, سب ویب سائٹس نیوز ویب سائٹس جو ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہیں, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ بھی ہیں جن کی ہر خبر میں सुपरलेटिव इस्तेमाल हो रहा है और एक ही लफ्ज जो है वो इतनी दफे दोहराया गया कि मुझे तो हैरान हो गया कि इस लफ्ज के इतने मानी भी हो सकते हैं। शर्मनाक तरीन
जी,
शर्मनाक के साथ में तरीन है वो, उसका इस्तेमाल जो है वो इतना कॉमन है और बिल्कुल ठीक कहा आमिर साहब ने। और जो किसी भी वेबसाइट पे एक नजर डालने से आपको मालूम हो जाएगा कि ये सनसनी फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रही है या फेक के लिए, और ये भी जहन में रखा है।
बहुत शुक्रिया वजाह साहब, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है और आज हमने बहुत अहम इशू पे फेक न्यूज़ पर बात की, जिसके लिए हमें अहमद दुरानी साहब, मोहम्मद उस्मान साहब, मज़र अब्बास साहब, वजाहत मंसूर साहब, आमिर हाशिम खाकमानी और आमिर ज़िया साहब ने ज्वाइन किया। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
पिट्सबर्ग में जब से एक मुसल्ला शख्स ने ट्री ऑफ लाइफ ट्री नामी एक यहूदी इबादतगाह में 11 अफराद को हलाक किया है, वहाँ की मजहबी कम्युनिटी शहर के इस मजाफाती इलाके में जहाँ की बेशतर आबादी यहूदियों पर मुश्तमल है नफरत के खिलाफ इकट्ठी हो रही है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर ने कहा था कि वो यहूदियों को मारना चाहता है। इसकी बजाय मुख्तलिफ अकायद के लोग कहते हैं कि कम्युनिटी इस वक्त इतनी मुत्तहिद हो रही है जितनी पहले कभी भी नहीं थी। पिट्सबर्ग से बैजान हमदर्द की रिपोर्ट के साथ मैं हूं यास्मीन जमील। पिट्सबर्ग में हफ्ते की वो सुबह किसी दूसरी सुबह से मुख्तलिफ थी। अमेरिकन सेंटर ऑफ पिट्सबर्ग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वसीम मोहम्मद कहते हैं,
वी वर हार्ट ब्रोकन व्हेन वी हर्ड व्हाट हैड हैपेंड एंड वी डिडंट बिलीव इट फर्स्ट, वी वर कॉलिंग पीपल टू ट्राई टू फिगर आउट व्हाट टू डू, यू नो,
लाइक बहुत अफसरदा हुए जब हमने वो कुछ सुना जो कुछ पेश आया था और हमें पहले तो इस पर यकीन ही ना आया। वसीम मोहम्मद सदमे की हालत में थे। उस सुबह उनका फोन मुसलसल बजता रहा।
I get a phone full of calls, texts and messages asking us what can we do from the Muslim community, where should we go?
मेरे फोन पर कॉल्स, टेक्स्ट और मैसेजेस का एक सिलसिला शुरू हो गया जिसमें हमसे पूछा जा रहा था कि मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से हम क्या कर सकते हैं, हमें कहां जाना चाहिए। इसलिए हमने फैसला किया कि सानहे के रद्देअमल में कुछ फंड्स इकट्ठे किए जाएं। ये अल्फाज थे इस्लामिक सेंटर ऑफ पिट्सबर्ग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वसीम मोहम्मद के। متاثر افراد کے خاندانوں کے لیے اپنے لواحقین کی آخری رسومات کے اخراجات کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کی ایک آن لائن مہم چند گھنٹوں میں وائرل ہو گئی، اور اگرچہ ابتدائی ہدف $25,000 اکٹھے کرنے کا تھا لیکن صرف چند دنوں میں اس مہم کے تحت $235,000 اکٹھے ہو گئے۔ اسلامک سینٹر آف پٹسبرگ کے مزنور بسواس کہتے ہیں،
We didn't even think that it's going to be that much of money that we would be able to raise.
ہمنے تو یہ سوچا تک نہیں تھا کہ ہم اتنی زیادہ رقم اکٹھی کر سکیں گے۔ پٹسبرگ کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ پٹسبرگ ایک کمیونٹی ہے اور یہ کہ اس کے ارکان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ مزا نور بسواس کے الفاظ،
Our relationship with all the other groups of faith, Catholic brothers and sisters, Jewish brothers and sisters or any denomination of Christianity,
Catholic بھائی اور بہنیں ہوں، یہودی بھائی اور بہنیں ہوں یا عیسائی برادری کے کوئی افراد، دوسرے تمام عقائد کے گروپس کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے ہی رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے اسلامک سینٹر آف پٹسبرگ کے مزنور بسواس کے، اور اسلامک سینٹر کے وسیم محمد کہتے ہیں،
These are real relationships that were there. So they existed before this tragedy. That's how we were to react so quickly.
یہ تھے وہ اصل تعلقات جو وہاں موجود تھے اور اس سانحے سے قبل بھی موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اتنی تیزی کے ساتھ رد عمل دینے کے قابل ہو سکے۔ یہ الفاظ تھے اسلامک سینٹر آف پٹسبرگ کے وسیم محمد کے۔ پٹسبرگ کی پولیس کے سربراہ اسکاٹ شوبرٹ کہتے ہیں کہ پٹسبرگ کی کمیونٹی ہمیشہ سے متحد رہی ہے۔
پٹسبرگ we celebrate together for, you know, whether it's sports teams or how the city's doing.
پٹسبرگ ہم اکٹھے خوشیاں مناتے ہیں، خواہ یہ اسپورٹس کی ٹیمیں ہوں یا خواہ وہ شہر کی کوئی بات ہو۔ جب کوئی سانحہ ہوتا ہے تو ہم اکٹھے اس کا سوگ مناتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور اسلامک سینٹر کے امام امرو الس ولی اس سے اتفاق کرتے ہیں،
If anything happens to us, they also come and they show their support. So it's a beautiful connection and I hope that we can work.
اگر ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ بھی آتے ہیں اور اپنی حمایت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت تعلق ہے اور مجھے امید ہے کہ یہاں جن بھی عقائد کے لوگ موجود ہیں ہم سب مل کر کام کر سکتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں۔ اور ایک ریسٹورنٹ کے مالک شان کیسی کا کہنا ہے کہ اس خوفناک سانحے نے شہر کو جو پہلے ہی متحد تھا اور بھی زیادہ قریب کر دیا ہے۔
And you can see in the last few days how the community is coming together so well. The Catholics
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ چند روز میں کمیونٹی کس طرح اتنی اچھی طرح قریب آ رہی ہے. کیتھولکس ہلاک ہونے والوں کی یاد میں ٹری آف لائف عبادت گاہ میں شمع فروزاں کر رہے ہیں, اور ایسے میں کہ جب کچھ لوگ خریداری کے لیے نکلنے کے بارے میں پریشان ہیں تو اسلامک کمیونٹی مدد اور رہنمائی اور حفاظت کی پیشکش کے لیے مل کر سامنے آ رہی ہے. یہ الفاظ تھے ایک ریسٹورنٹ کے مالک شان کیسی کے. پٹسبرگ پولیس کے سربراہ شوبرٹ کہتے ہیں کہ پٹسبرگ ہمیشہ سے ایک جڑا ہوا شہر تھا, اور یہ کہ کمیونٹی کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا.
پٹسبرگ سٹرونگر دین ہیٹ اینڈ وی ٹرولی آر. دیٹس سم تھنگ اٹس بیوٹیفل دیٹس کم آؤٹ آف دس ہول ٹریجڈی.
پٹسبرگ نفرت سے زیادہ مضبوط ہے, اور ہم واقعی ایسے ہیں. یہ وہ خوبصورت چیز ہے جو اس تمام المیہ کے نتیجے میں سامنے آئی ہے. ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہم جو کچھ ہیں اور ہم جو یقین رکھتے ہیں وہ اسے تباہ کر دے. یاسمین جمیل,